दुर्योधन वह वैभव लेकर के नहीं चला गया, रावण कुछ वैभव सोने की लंका नहीं लेकर के गया, हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं ले गया, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल इत्यादि सब लोग, अमेरिका के कैनेडी और कौन कौन, अभी क्रुश्चेव जी बड़े महान थे, सबको सब कुछ छोड़ करके हम भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। आखिर में ये सत्ता ही हम नहीं है, जीवात्मा मरती नहीं। इसलिए बतलाये जे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, पहले समझ करके सुनो पहले और तब फिर उसका कीर्तन करो, बिना सुने हुए कीर्तन करेगा तुम नहीं समझ सकेगा, इसलिए पहले सुनो। जितना ही महात्मा उसका नाम सुनता जाएगा, भक्ति का महात्मा भगवान को समझता जाएगा, अपने आप सरल रूप में कीर्तन, और जितना ही कीर्तन होगा अपने आप स्मरण होगा। इनमें से सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान दोनों एक है। रूपे का दो पहलू होता है नोट में भी, एक तरफ एक तरह का एक तरफ, किंतु भगवान का नाम और वो दो पहलू नहीं है, उसमें तो दो तरफ है ना,
एक को एक की जगह दूसरा,
किंतु भगवान के नाम में भगवान का नाम और भगवान दोनों एक है, इस चीज को समझो। नाम कहते ही भगवान आ जाए, हम समझे चाहे न समझे, इतना विश्वास के साथ में हरि नाम करना होगा। हम जब नाम करते हैं तो ये भगवान ही को हम सेवा कर रहे हैं। ये नाम जो है ये अपने आप चेष्टा से नहीं होगा, नाम बहिराय बटे नाम कभू न, कहते चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं नाम बहिराय बटे कि नाम कभू न, कभू नाम आभास सदाई नाम अपराध,
ये सब जानियो भाई कृष्ण भक्ति बाद।
एक आदमी ऐसे भगवान का नाम कर रहा है, अच्छा तो है किंतु अभी भगवान स्वयं नहीं है, अभी चित्त निर्मल होने पर भगवान के साथ में संबंध युक्त होकर के भगवान की भक्ति उदित होने पर जो नाम होगा वो शुद्ध नाम होगा। अभी हम नाम के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए इनमें भी सबसे श्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन है, किंतु वो भी भगवान की कृपा होनी चाहिए या भक्त की, बिना इसके नहीं होगा, क्योंकि चिन्मय चीज है ना, इसलिए जड़ वाले व्यक्ति लोग इसको नहीं दे सकते, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो ये कह रहे हैं कि ये जो भगवान की कृपा है इसी के द्वारा भक्ति होती है, इसलिए इसको मैं प्रणाम करता हूं। कैसी है ये? अद्भुत शक्तिशाली है। ये वर्षा होने के बाद में तब बीज अंकुरित होते हैं, और वर्षा होने के बाद में ताप जाता है, किंतु ठंडी ठंडी पहले तो हवा बहेगी, तो उससे थोड़ा सा तीव्र ताप जो होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। ये संसार का जितना दुख ताप है भगवान की कृपा से जहां आने को होगी ना, वर्षा के पहले ही उसको दूर कर देगी, ये भगवान की कृपा है। जहां भगवान की कृपा होने को है ना, जहां आई अभी वर्षी तो नहीं किंतु अभी मेघ हो गया बरसने बरसने को, जितना ताप संसार का है ये सब दूर हो जाएगा पहला। और जहां वर्षा हुई समस्त शस्यों में अंकुर पैदा हो जाएंगे,
प्राण का संचार हो जाएगा।
बरसात में देखेंगे जहां पानी पड़ा और सब चारों तरफ में भर जाता है सब कुछ, उसी तरह से ये भगवान की कृपा है। जिस हृदय में मरुभूमि है, मरुभूमि माने क्या, जिसमें
बारिश ना हो,
बारिश होता ही नहीं रही,
जिसमें अंकुर नहीं है, फल नहीं है, हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है, उसको रेगिस्तान कहते हैं, बड़ी गर्म लू चलती है। तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा की वासना नहीं है, वो सांसारिक दृष्टि से जैसा भी हिरण्यकश्यप जैसा प्रतापशाली हो, रावण जैसा, वो हृदय मरुभूमि है। ये भगवान की कृपा बरसने के पहले ही को क्या करती है, एकदम शरीर को ऊपर नीचे चारों तरफ में ठंडी कर देगी। ये वर्षा लाख वर्षा होने पर भी किसी के अशांत हृदय में शांति नहीं देगी, किसी के ताप को, दुखों के ताप को ये दूर नहीं कर सकती, किंतु भगवान की कृपा है उसके ताप को संपूर्ण रूप से दूर कर देगी। पहला ये इसका, और यदि वो कृपा बरसेगी, कृपा वर्षा माने भगवान के नाम रूप गुण लीला की जब वर्षा करेगी माधुर्य को, तो हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाएगी और वो व्यक्ति विश्व के किसी को देख लेगा, स्पर्श कर देगा, यहाँ तक कि जड़ को भी, जैसे कि बाघ भालू इत्यादि इन सब प्राणियों को भी अपने प्रेम से डुबा। जैसे चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं बंगाल से,
जगन्नाथपुरी से,
वृंदावन से, वृंदावन आ रहे हैं
जगन्नाथपुरी से,
मध्य भारत के गभीर जंगलों से होकर के आ रहे हैं, उनको देख करके बाघ सिंह हाथी भालू सब एकदम उधर में आ रहे हैं, और जब हरी बोल करके आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगती है, होश नहीं, ये किधर चल रहे हैं, बाघ भालू सब आकर के रास्ते पर पड़ जाते हैं, महाप्रभु उनके ऊपर से होकर के चले जा रहे हैं, उनके साथ जो पीछे जो फॉलो कर रहे हैं वो तो डर के मारे एकदम कांप रहे हैं, और वैसे चले चले जा रहे हैं, वो भी ओ करते हुए हरे कृष्ण नाम करने लगते हैं, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ तक कि पेड़ लता इनमें भी श्रवण शक्ति है, महाप्रभु के मुख से जब नाम सुनते हैं सब एकदम ऐसे हो जाते हैं, उसमें में बाढ़ आई प्रेम की, ये कृपा है। उस समय में महाप्रभु जी ने ये विचार नहीं किया कि इसके सुकर्म है कि नहीं, सुकृति है कि नहीं, क्या है कि नहीं, ये नहीं देखा, जो सामने आया ना एकदम ढाल करके बिना वजन का दे दिया, बिना वजन किए भी कृष्ण ने वजन करके प्रेम दिया, महाप्रभु जी ने ये कोई कारण इत्यादि नहीं देखा। जिसके बर्तन नहीं है प्रेम के, उसको बर्तन अर्थात उसको योग्यता दे करके उसमें प्रेम एकदम भर दिया, ऐसे महाप्रभु की ये कृपा है। अब वो कहते हैं, हम रूप गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं, ये पहले चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा का, रूप गोस्वामी को वंदना करते हैं जो उस भक्ति को लेकर के जगत धारा में इसमें प्रवाहित किया। पहले भक्ति ये थी, जैसे प्रहलाद महाराज जी सर्वत्र ही भगवान को अनुभव करते हैं, जीवों में प्रत्येक जड़ में जिसमें सब में भगवान की उपस्थिति देखते हैं, सर्वत्र भगवान है। हम लोग दूध है, दूध में घी नहीं देख पाते, सरसों में तेल नहीं देख सकते, किंतु सरसों में तेल है, तेल की पोटेंसी उसमें है, कुछ सरसों लेकर के और उसको पीस दीजिए, उसमें से तेल आ जाएगा। दूध में हम घी नहीं देखते, किंतु थोड़ा सा उसको जमा करके दही बना करके मंथन कीजिए, या ऐसे ही दूध को ही मंथन कर दीजिए और फिर उसको लेकर के और आग पर रख दीजिए, देखिए पिघल करके उसमें से घी आ जाएगा। भगवान सर्वत्र हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज जी सर्वत्र ही भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं, सर्वत्र भगवान, ऐसी कोई भी स्थित जगह नहीं है अनुपरमा भगवान नहीं, और हमको नहीं देख रहे, हम उसकी उपलब्धि नहीं कर। तो पहले लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, आराधना करते थे, तब भगवान की उन पर कृपा होती। जैसे कल बतलाया था ध्रुव महाराज जी ने इतनी कठोर तपस्या की जो हवा तक लेना बंद कर दिया, पानी की और भोजन की तो बात ही क्या, 6 महीने के बाद में ये हवा भी खाना बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया, तब उनको भगवान के दर्शन, और उनको दिया क्या, 36,000 वर्ष तक ये समस्त पृथ्वी का राज्य भोगने के लिए ये दे दिया। है मैंने क्या किया, ये नश्वर चीज है, इसे तो हमको कुछ होगा नहीं, तो इतना कठोर साधन करके उनको ये चीज मिली। प्रहलाद महाराज जी कितने 60,000 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, और उस समय नारद जी का संग हुआ, गर्भ का संस्कार हुआ, वो माता जी को सुनाते किंतु सुना रहे थे असल में किसको,
प्रह्लाद महाराज जी को।
और समस्त शास्त्र उपनिषद भगवान का जितना तत्व था, जगत का तत्व सब उनको ही, इसलिए जन्मते ही महाभागवत हुए, सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतनी कठोर तपस्या के बाद भाई और भी भगवान को, ये भगवान है सर्वशक्तिमान है, मैं बहुत तुच्छ दास हूं, इस भाव से रामचंद्र जी के समय में भी भक्ति तो ही किसी के बेटे बन गए, इसे अधिक नहीं, बंधु के रूप में आए। कृष्ण जब आए, जो कोई जिस भावना से उनका भजन किया उसको उसी रूप में उनको दिया प्रतिफल। किसी ने उनको मित्र समझा, किसी ने अपना पुत्र समझा, किसी ने अपना भाई समझा, किसी ने उनको प्रियतम समझा, जितने भी संसार के जितने भी भावनाएं हैं सब उनके अंदर में आई, किसी भी रूप से उनका भजन करो। नारायण को ऐसा नहीं कर सकते, नारायण को अपना बेटा नहीं मान सकते, पति नहीं मान सकते। रामचंद्र जी को दूसरे कोई चाहे जो हम विवाह कर लें, सीता के अतिरिक्त ये नहीं हो सकता। कृष्ण जिस जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी जिस भावना के साथ में उनका भजन करता है, ये जथांग माम प्रपद्यन्ते
तांग तथैव भजाम्यहम्,
उसका उसी रूप में फल देते हैं। इसलिए कृष्ण भगवत्ता की सार है। तो अभी तक त्रेता युग तक, द्वापर युग के तक लोग ये देखते थे कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान ऐसा नहीं हो कि मर जाए, इसलिए उनका जन्म नहीं मानते थे। आर्य समाज के कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यदि उनका जन्म माना जाएगा तो उनका मरना भी जरूर मानना पड़ेगा, यदि उनको सुख होता है तो उनको जरूर दुख भी होगा, इसलिए भगवान का जन्म इत्यादि मत मानो, वो सर्वव्यापी हैं। जो सर्वव्यापी हैं वो उनको कैसे देखा जा सकता है, ऐसा संभव नहीं। जो एक जगह रहेगा वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, जो सर्वव्यापी है वो एक एक रूप नहीं हो सकता, इसलिए उनको निराकार। इसके भी बहुत सब विचार है। तो महाप्रभु जब जगत में आए, कहे तुम अपना कृष्ण को अपना निकटतम मानो। उन्होंने उस भक्ति को, ऐश्वर्यमय जो भक्ति थी उसको रस रूप दे दिया। पहले थी भक्ति, अब ये महाप्रभु जी ने उसको क्या किया, भक्ति रस बनाया, आनंदमय उसको कर दिया। जैसे साधन अवस्था में ही हम कृष्ण को अपना सखा मान करके, कृष्ण को अपना लाडला बेटा मान करके, गोपाल जी देखे ना, घर ऐसा कोई घर नहीं होगा करीब करीब आस्तिक हिंदुओं में जिसके घर में बाल गोपाल जी नहीं। बाल गोपाल की भावना क्या है,
छोटा बच्चा है,
हमारा ये बेटा है। इस तरह से ममता युक्त यदि भगवान का भजन हो, ये सहज रूप में हो जाता है। अधिक कुछ कर, यदि आपका घर है अच्छा तब लो भाई गाय भी घर में रखो, ठाकुर जी का भोग लेना है। वैभव है, वैभव के साथ में जन्माष्टमी मनाओ, इनको भोग लगाओ खिलाओ और प्रसाद के रूप में कुछ ग्रहण करो, भक्ति में ये बाधा नहीं, सब कुछ अनुकूल इसके हो जाएगा। हमारा जितना वैभव है राज्य है सब कृष्ण ही का है, इन गोपाल का है, मैं दास होकर के सेवा करूं। अभी तक दक्षिण में त्रावणकोर में हम लोग गए, वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर था, अभी भी यह है पद्मनाभ जी का, उसका मालिक, उसका सेवाई तो राजा है, मालिक नहीं, मालिक कौन है, वो राज, वो
ठाकुर जी स्वयं,
ये जगन्नाथ जी वहाँ के स्टेट के मालिक हैं, वो राजा इत्यादि जितने भी उनके सेवक हैं वो लोग ट्रस्टी हैं, केवल मालिक जगन्नाथ जी हैं, मालिक वो पद्मनाभ, उनके हो करके उनकी सेवा करते हैं, इसलिए उनका इतना विशाल राज्य है, उनको यह अभिमान नहीं होता कि मैं राजा हूँ, राजा कौन है, मैं उसका एक सेवक हूँ, इसलिए उस समय में सभी कुछ अनुकूल हो जाता है। ये भक्ति का, ये करने का ये तरीका है, यदि धन भी है संपत्ति है सब कुछ है, ये प्रभु का है, हम उसके सेवक मानते हैं। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी की कृपा से भक्ति एक ऐश्वर्य भाव था उसको भक्ति रस के रूप में लिया। चैतन्य महाप्रभु जी गंभीरे में बैठे हैं पुरी में, आविष्ट हो गए हैं, सोच रहे कि मैं ब्रज में हूं, मैं राधिका हूं, भाव में तन्मय हो गए। आवाज आई कान में बंसी की, एकदम व्याकुल उठे, किधर से बंसी की आवाज आई उधर में चले। पांच पांच गेटे हैं, गेट उसमें था अभी भी, दरवाजा लगा हुआ बंद चारों तरफ में, लेकिन कैसे उसको पार कर गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां पास ही में स्वर्ग द्वार है जगन्नाथपुरी में, वहां पर पहुंचे। देखा ये जमुना जी बह रही है, इसमें कृष्ण खेल रहे हैं, गोपियां हैं और बंसी वहीं से बजा रहे हैं, बस उसी में कूद पड़े। देख रहे हैं कि हम भी उन्हीं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। घंटों हो गए, रात में 12 बजे वहां पर कूदे और दूसरे दिन सवेरे 8-9 बजे तक किसी को पता नहीं ये कहां गए। लेकिन ये कहां गए, खोजते 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 चारों तरफ छान दिया, कहीं नहीं मिले। स्वरूप दामोदर राय रामानंद उनके परिकर लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे देखा, जैसे शायद यहां आ गए हैं। इधर एक टोली चली, एक इधर में टोली चली, एक जहां जहां पर महाप्रभु जी जाते हैं वहां वहां पर सब टोली लोगों को भेजा। एक जगह जब जा रहे थे समुद्र के किनारे, एक आदमी कुछ पागल सा नजर आया, वो चिल्ला रहा था जी हमको भूत लग गया, भूत लग गया। तो उसमें स्वरूप दामोदर जी ने कहा, जैसे भूत लग गया, कहां भूत लग गया, तो वहीं पर हमको लग गया, मैं मछली मार रहा था, वहां पर मछली मारते हैं सब, हमारी जाल में एक भूत आ गया और आने के साथ साथ हमको पकड़ लिया और ये कहकर वो भाग रहा। स्वरूप दामोदर जी ने उसको पकड़ लिया और उसको एक थप्पड़ बड़े जोर से मारा। मारते ही वो थोड़ा सा ज्ञान में आया, होश में आया, देखो तुम्हारा भूत हमने हटा दिया, अब भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। अच्छा बतलाओ जी ये भूत कहाँ है। उन्होंने कहा जी देखो वहां पर है, मैं नहीं जाऊंगा, हमको पकड़ लेगा। उन्होंने सोचा जैसे ये महाप्रभु जरूर समुद्र में कूद गए होंगे और उसी के जाल में वो आ गए होंगे, चलो तो देखें। वहां पर गए तो सचमुच में देखा, कछुए के समान समस्त अंग उनके शरीर में, आज तक ऐसा किसी का भाव, ये केवल मात्र राधिका का प्रेम में विरह में ऐसी दशा होती थी, किंतु जगत में ऐसा सुना नहीं गया न देखा गया। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित, सांस थोड़ा सा चल रहा, एकदम पोटली जैसे हो गए। सब लोगों ने कीर्तन आरंभ किया, वो जानते थे जे कैसे ठीक होते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम,
स्वर से करने लगे, कभी कभी हरी बोल हरी बोल हरी बोल,
गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।
एक दो घंटा करने के बाद में उनमें थोड़ी सी चेतनता आई, चेतनता होते धीरे 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 अंग प्रत्यंग ठीक हो गए और इसके बाद में उठ करके खड़े, इधर देख रहे इधर देख रहे हैं, रोने लग गए। हमको तुमने कहां से, मैं कहां था, कहां ले आए, मैं वृंदावन में अपने प्रभु के प्रियतम के साथ में मैं खेल रही थी और तुम लोग हम लोग को जोर जबरदस्ती से लाठी उठा लाया यहां। विलाप करने लगे, फिर बतलाया जैसे क्या क्या वहां पर लीला हो रही थी, कैसे हो रही थी। और इसके बाद में जिन लोगों ने देखा, चैतन्य चेतामित में ये सब प्रसंग वर्णन है। भक्ति केवल ऐसे ही नहीं है, मन की वृत्ति नहीं, मन की वृत्ति जहां से अतीत वो भगवत राज्य में आत्मा को लेकर के उपस्थित कर देती है, किंतु ये होगा सब भक्तों की कृपा से जो ऐसे भक्त हैं। तो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी की कृपा से उस भक्ति को सरस बना करके भक्ति के रस में इस जगत में लाया। उस रूप गोस्वामी जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है, कितना बज गया,
92 मिनट।
उन्होंने बतलाया ऐसे रूप गोस्वामी जो हैं भक्ति क्या चीज है, कैसी चीज है, कैसे होती है, इसका क्रम एक वर्णन किया जो कल हमने श्लोक कहा था, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग
तथा भजन क्रिया,
भजन क्रिया ततो अनर्थन वृत्ति
सत्ततो निष्ठा,
निष्ठा
रुचिस्ततः,
रुचिस्ततः
अथाशक्ति,
अथाशक्ति
ततो भावो,
ततो भावो
ततो प्रेमाभुदंचति,
ततो प्रेमाभुदंचति
साधकानां
प्रेम्णा
प्रादुर्भावो भवेत् क्रमः।
ये भक्ति संतों की कृपा से, विशेष करके प्रेमी संत हों उनकी कृपा से ये भक्ति होती है। भक्ति मैंने कल बतलाया कृष्ण की सेवा करने की वासना, मैं कृष्ण का सेवा करूंगा। संसार की बहुत जन्मों जन्मों तक सेवा की सुख शांति नहीं मिली, अब तो मैं करूंगा। जहां ये भावना आई साथ ही साथ में ये समझो कि उसको श्रद्धा हो गई। श्रद्धा का लक्षण क्या बतलाया, श्रद्धा का लक्षण ये बतलाया, मैं मुझे कोई बोटी बोटी भी काटते किंतु कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकता, चाहे जैसे भी परिस्थिति आएगी, भगवान का जो नाम कर रहा हूं, उनकी कथा सुन रहा हूं, संसार की सारी विघ्न व्याधा जीतना है, विपत्ति कुछ भी आ जाए, अब मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकता। इस श्रद्धा को, विश्वास का नाम श्रद्धा शब्द से कहते हैं, विश्वास किसमें, भागवत इत्यादि शास्त्रों में, गुरु के वचनों में, ये यदि विश्वास हो तो उसको समझो जी ये श्रद्धा है। ये तो कहेगा जब विभिन्न बाधा आएगी मैं तो छोड़ूंगा नहीं, किंतु छूट भी सकती है, अभी तो मन के द्वारा भी निश्चित कर रहा है ये पूरी अभी होगी कब, हरिदास ठाकुर जैसी भक्ति होने के बाद में तब होगी, पहली स्थिति में नहीं होगा, किंतु निश्चय ऐसा करेगा। जब साधु संतों के वचन में, साधु माने कौन, केवल निराहार रहने वाले, भगवान को निराकार मानने वाले, त्यागी बैरागी या मौनी रहने वाले, इनको साधु नहीं कहा गया। जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान का नाम कीर्तन जितना करते हैं, जैसे रूप में करते हैं, उसके रूप में ये फर्स्ट क्लास के साधु हैं, सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, फिफ्थ, सिक्स, नाम में जीत की जितना विश्वास, कीर्तन में, भक्ति में जिसका विश्वास, उसके अनुसार में ये भक्तों का तारतम्य होता है। जिसके नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के हरि कथा के प्रति रुचि नहीं है, वो जितना ही चाहे मौनी रहें, जितना भी त्यागी रहें, जितना भी बैरागी रहें, जितने भी शास्त्र ग्रंथों का पोटली अपने सिर में रखें, साधुत्व नहीं। ज्ञान करने से भी, बतलाने से भी, गीता भागवत शास्त्र सब मुखस्थ याद है और दूसरों के लिए उपदेश दे रहे हैं, अपने जीवन में आचरण जो नहीं किया, भगवान के प्रति वो श्रद्धा नहीं। कैसे, जैसे एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं भागवत के ऊपर में, भाई एकादशी सबको करना चाहिए, एकादशी करने नहीं करने से भक्ति नहीं होती। उनकी घरवाली भी बैठी थी, उसने कहा, संकल्प ले लिया जी हम तो भक्ति करेंगी, आज से एकादशी करेंगी, उसने रसोई घर में नहीं बनाया। जब ये पाठक वहां पर पहुंचे, कहे रसोई बनी, आलू का दम बनाया,
पूरी
घी का पूरी बनाया, खस्ता पूरी तो नहीं, आज तो नहीं बनाया, क्यों, आचार्य काशी है,
निर्जरा करना है,
तो अपने लिए कहा था ना, दूसरों के लिए कहा था। नहीं, ये भक्ति नहीं। जो अपने जीवन में आचरण करने वाले, भगवान का कीर्तन करने वाले, जो भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके प्रति ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तब तो वो साधुत्व है। और नहीं तो केवल वैराग्य, वैराग्य तो हम लोगों से कोटि गुना अधिक बंदरों में है, खेती बाड़ी नहीं करते, घर नहीं बनाते,
कपड़ा नहीं पहनते,
कोई कारोबार नहीं करते, विवाह शादी भी नहीं करते, कितने वैरागी हैं। जा कुछ देखा बस लपक करके ले लेंगे। उनको रसोई बनाने की क्या जरूरत है, कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, नहीं, इससे वैराग्य से नहीं होता। केवल सात्विक भोजन करने से ही भक्ति नहीं हो जाती, उसे नहीं होगा। उसे ऐसे हैं जो घास ही खाते हैं
बकरा,
तो उससे क्या होगा, कोई दूध पीने से, मैं दूध ही केवल लेता हूं, इससे नहीं। संसार की जिस स्थिति में रहे, भगवान के प्रति नाम में श्रद्धा हो, यह साधुता का मुख्य लक्षण है। उस पर विश्वास है, भगवान की लीला कथाओं पर विश्वास, भागवत पर विश्वास है, गीता पर विश्वास है, उसमें जो कर रहे हैं उसको करते हैं। गीता में बतलाया स्थिति प्रज्ञ का क्या भाषा है,
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा
किसको कहते हैं, स्थित
समाधिस्थस्य की
प्रज्ञा माने होता है क्या, प्रज्ञा ज्ञान, किसका स्थिर ज्ञान है, किसका, इसके लिए बतलाया जा निशा क्या
सर्वभूत,
हाँ वो तो है, ये इसके बाद वाला या निशा सर्वभूतानां जगति संयम, जिसमें जगत के लोग अभी जग रहे हैं उसमें वो सो रहे हैं, विषय में सो रहे हैं, विषयों को संग्रह में, और जिस विषय में जगत सोता है उसमें वो भगवत विषय में वो जागते हैं। इन लोगों की बुद्धि स्थिर है, समस्त विश्व का सब कुछ नष्ट होने पर भी चित्त का चित्त एक सेकंड के लिए चंचल नहीं होता, वो स्थिर
त्रिभुवन विभव है तभी।
समस्त सुखों के पाने पर जिसका मन आनंद से भर नहीं उठता वो स्थित प्रज्ञ है, ये गीता इत्यादि में बतलाया। इसके प्रति विश्वास रखे तो ऐसा ही चले, एक हाथ से युद्ध करो ने? और एक हाथ से क्या करो, मन से भगवान का स्मरण करो, हमारा स्मरण करते हुए युद्ध करो, कार्य करो, यही तो जगत है, यही कर्म का कुशलता है, कर्म की यही कुशलता है। और फिर अंत में कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, ये भी कहा। और उद्धव से इस सब से वही अतीत ले गए, सवेरा हो गया। तो हम भक्तों की कृपा को हम नमस्कार करते हैं, जिस की कृपा से ही ये भक्ति होती है, और जिनकी कृपा से ये भक्ति, पहले जो भक्ति थी अब हो गई रसमयी, चैतन्य महामय इस रसमयी भक्ति का प्रचार किया, रूप गोस्वामी ने इस रसमयी भक्ति का प्रचार किया। उसका पहला है आरंभ हुआ कहाँ से, ऐसे भक्तों के संग से ये भक्ति होती है। अजय भगवान से भक्ति ये पैदा नहीं होती, अजय भगवान के द्वारा नहीं होती, अजय क्यों नहीं, भगवान की कृपा से भक्ति क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, किंतु ये एक दोष होता है, भगवान तो समदर्शी है ना, तो हमको नहीं दिया उनको दिया क्यों, ये प्रश्न उठेगा, आ रहा है समझ में कि नहीं। भगवान यदि समदर्शी हैं तो इतने लोगों में से उनको क्यों दिया और उनको क्यों नहीं दिया, उनको दिया एक उनको दिया क्यों, इसलिए भगवान की समदर्शता में हानि हुई। यदि भगवान दे देते हैं किसी को भक्ति तो इसमें दोष नहीं है, गुण ही है। जैसे भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया और असुरों का भी पक्ष में गए और मोहिनी बन करके ठग लिया ना, मारपीट में नहीं गए, देखा जी इन असुरों को छकाना चाहिए, इनको देश से ये अमर बन जाएंगे और जगत को ध्वंस करेंगे, देवता लोग जगत की रक्षा करते हैं इनको अमृत मिलना चाहिए, बस उनके तरफ में देख रहा देख करके मुस्कुरा दिया थोड़ा सा, बस उसी पर वो फिदा हो गए और वो बांट रहे हैं इधर में। तो ये पक्षपात हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, भगवान स्पष्ट करते हैं, किंतु भगवान क्या यह पक्षपात जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए पक्षपात होने पर भी ये दोष नहीं। भगवान ने कंस को मारा, जरासंध को मारा, मरवाया भीम के द्वारा, किंतु ये भगवान के द्वारा पांडवों का या जदवंशियों का पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो उग्रसेन का पक्ष लिया ना, अक्रूर का पक्ष लिया, उद्धव जी का पक्ष लेकर के कंस कुमार, ये पक्षपात तो हुआ, किंतु उससे क्या हुआ, उसको भी मुक्ति दे दी संसार से, उसके ऊपर भी करुणा की वर्षा कर दी और साथ साथ में भक्ति का इनको बचा करके भक्ति का पोषण, इसलिए कल्याण युक्त है। किंतु तो भी भाई पक्षपात तो रहा ही, ये पक्षपात भक्ति में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं कि वो भगवान के द्वारा भक्ति होती है, उनकी कृपा से नहीं होगा। एक और बात है, क्यों नहीं होगी, भगवान तो सब समय आनंद में मग्न रहते हैं, सच्चिदानंद वस्तु है ना, जड़ जगत में जितने क्लेश हैं ये माया का, ये उनको पता नहीं, उनको पता नहीं, उनके नीचे जो कर्मचारी हैं उनको कुछ पता रह सकता है। हमारे राष्ट्रपति वहां पर दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ पर पुलिस वाले हम किसी निरीह व्यक्ति पर उसको कष्ट दे रहे हैं, चोर बन करके, चोर बनकर है रक्षक, और उसी के घर में सब कुछ अपहरण कर लिया और उसको मरवा भी दिया, ये राष्ट्रपति देख रहे हैं, खुद यदि रहते तब उनको पता चलता। तो वैसे ये जगत में ये जो क्या हो रहा है, भगवान के निर्देश से ये माया और ये सब ब्रह्मा इत्यादि शंकर ये सब देख सुन करके कर रहे हैं, भगवान तो आनंद में डूबे हैं, उनको पता नहीं है भाई इसका, आप हजार रोते रहे और कृष्ण कृष्ण भी कहें तो वो नहीं सुनेंगे, प्रार्थना उनके लिए होगी तब सुनेंगे, अपने लिए तू प्रार्थना करेगी नहीं सुनेंगे, इसलिए भक्ति नहीं देंगे। दूसरी बात अब चलिए, अब भक्तों की कृपा से चलिए, उत्तम जो भक्त हैं वो भी भगवान के चिंतन में सब समय सार, उनको भी ये जगत का ये सब, जैसे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि हैं, इनको भी पता है, जो लोग ये संसार में हैं और हमारे दुखों को देखते हैं और उनको थोड़ा सा ज्ञान है, कुछ भक्ति का उन्मेष भी उनके हृदय में है, जो मध्यम अधिकारी हैं, जो जगत में डोल रहे हैं, भगवान का भी भजन करते हैं, अभी सिद्धि भी नहीं हुई है किंतु पूर्ण विश्वास है, उनका इनका दुख देख करके चित्त द्रवित हो जाता है, ये लोग उस भक्ति की वासना, कृष्ण की सेवा करने की वासना, ऐसे मध्यम अधिकारी हम लोगों जैसे लोग ये जगत के जीवों पर दया करके उनको भक्ति का बीज उनके में बोते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इनमें पक्षपातित्व का दोष नहीं है, उत्तम पुरुष में भी भक्ति का पक्षपातित्व है, क्यों दिया क्यों नहीं दिया, और मध्यम भक्त के लिए लक्षण के लिए चार लक्षण दिए गए, जो मध्यम भक्त कौन है, क्या जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, भक्तों के प्रति मित्रता की भावना है, उत्तम भक्तों के प्रति मित्रता युक्त सेवा, बराबर वालों के प्रति सख्य भाव, और नीचे के प्रति वाले लोगों के प्रति दया युक्त सख्य भाव, और जो विरोधी हैं
उपेक्षा
उपेक्षा। तो जो मध्यम अधिकारी इसका ये कर्तव्य है भगवान के प्रति प्रेम करे, जीवों के प्रति जो उच्च भक्त हैं उनके प्रति सेवामयी प्रीति रखे, और जो निम्न कनिष्ठ हैं उनको भगवान की कथाओं को सुना करके उनके भीतर में भक्ति का संचार कर दे, इनका ये कर्तव्य है, इनमें पक्षपातित्व का दोष नहीं आएगा क्योंकि इनका कर्तव्य ही यही है। इसलिए ऐसे भक्तों की कृपा यदि हो तो भक्ति की वासना हृदय में आती है, ऐसे भक्तों को हम लोग नमस्कार करते हैं, आज यहीं तक बस। भगवान की कृपा से नहीं होगा, भक्तों की कृपा से, वैसे उत्तम ऐसे जो हमारे अभी लेवल में चल रहे हों, हम लोगों में बैठ करके कीर्तन कराएं, भगवान का रूप, भगवान की लीलाओं को सुनाएं, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दें, सेवा की वासना उत्पन्न कर दें, भजन की प्रवृत्ति ला दें, इन लोगों के पास तो फिर भगवान कहाँ गए, कहा जैसे यही भक्त लोग उसके लिए प्रार्थना, जय प्रभो हमारी प्रार्थना सुनिए, इसके ऊपर में आप कृपा कर, तब भगवान उसके ऊपर में झट कृपा कर दिया,
कृपा भगवान ने,
वही भगवान ने किया, किंतु माध्यम कौन हुआ,
भक्तों
के माध्यम से भगवान की कृपा, जैसा भक्त चाहेगा भगवान की कृपा को यूटिलाइज करेगा, इसलिए भगवान की कृपा से ही भक्ति हुई, किंतु हुआ कैसे?
मध्यम अधिकारी के माध्यम से,
क्योंकि मध्यम अधिकारी शरणागत व्यक्ति है, इसकी प्रार्थना को वो सुन सकते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, बस झट भक्ति आ गई, बस आज यही तक रहे।
मनमपि सचि पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम् तस्य गृजत्रिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। हम लोगों ने साधन भजन के लिए, शिक्षा के लिए कैसे साधन भजन करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने माधुर्य कादंबनी ग्रंथ आरंभ किया है। जिन लोगों को विशेषकर सद्गुरु से हरिनाम और दीक्षा मिल चुकी है, जो लोग शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये अमृत की वर्षा के समान, जैसे अमृत की वर्षा बरसाने वाली कोई मेघ हो, ऐसे ये है। इसको सुनने से राधा कृष्ण में अपने आप साधन भजन में रुचि उत्पन्न करा दी, और साक्षी हरिनाम करने में, हरि कथा सुनने में, भगवत कथा स्मरण करने में इतना आनंद मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा है माधुर्य कादंबनी। कृष्ण के रूप नाम गुण लीला की रूपी अमृत माने मधुर अमृत को बरसाने वाली ये मेघमाला है। कैसे उस चीज को हम पा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने लिखा है। ये एक बात तो सर्वथा निश्चित है, सर्वथा निश्चित है। इधर देख करके कान सुनिए, हाथ पर सिर मत रखिए, गौर से सुनिए। यह बात ध्रुव निश्चित है, भगवान की भक्ति के बिना संसार में सुख और शांति नहीं हो सकती। पहले तो इस चीज को समझना है, बिना भगवत भक्ति के न लौकिक न पारलौकिक कोई भी सुख और शांति नहीं। वो मृग तृष्णा के समान है। संसार में जो सुख और शांति जो मिलती है वो मृग तृष्णा की भांति है। मृग मरुभूमि में गर्म जब हवा लू चलती है, लू की ये सब लहर चलती है, उसको देख करके समझता है ये पानी की लहर है, और आगे बढ़ते 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 उसी मरुभूमि में गिर करके छटपट करता हुआ प्राण को छोड़ देता है। इसलिए भगवत भक्ति ही सुख और शांति का कारण है, लोक परलोक सर्वत्र। किंतु ये भगवान कौन है ये भी थोड़ा सा निश्चित होना चाहिए, और भक्ति किसको कहते हैं ये भी निश्चित होना चाहिए, और जो करने वाला है ये भी निश्चित होना चाहिए, तीन चीजें। नहीं तो भगवान यदि मान लिया कोई किसी चीज को, जैसे ईश्वर है, जगन्नाथ हैं, इंद्र हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, इनको मान लिया तो एकदम यह बदल जाएगा। यदि राम को
नृसिंह को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को भी मान लिया, ये ठीक तो है, किंतु पूर्ण कॉन्सेप्शन उसका नहीं है भगवत्ता का। है ठीक अल्लाह खुदा भी ब्रह्म भी ये सब भगवान ही हैं, किंतु ये फैक्शंस हैं, अंश हैं। भगवत्ता की चरम सीमा कृष्ण में ही निहित है, सब ठीक होने पर भी। भगवत्ता में जो जो चीजें पाई जाती हैं पूर्ण रूप और सब में कुछ कुछ है आंशिक रूप में, किंतु सीमा तक जिसको उपनिषद वेदों में और सर्वत्र पुराणों में भागवत में बतलाया गया, गीता में बतलाया गया, वो कृष्ण में ही वो सब कुछ लक्षण मिलते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक माने धर्म, इस सब लोगों ने कृष्ण को ही अंतिम सीमा तक, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये निर्णय किया। भक्ति के संबंध में हमने बताया कॉजलेस, कोई संसारी कामना वासना जिसमें नहीं हो, कृष्ण के लिए ही कृष्ण की भक्ति हो तो ये शुद्धा भक्ति है, कृष्ण के लिए ही कृष्ण की भक्ति। ऐसा नहीं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं और धन चाहते हैं तो ये धन हो गया, धन के भक्ति, इसलिए ऐसा नहीं। कृष्ण की भक्ति हो, कृष्ण की प्रीति के लिए ही हो, तब ये भक्ति होगी। इसी भक्ति के लिए कह रहे हैं, जब ये कहीं सुनता है कोई व्यक्ति, संसार में दुखी हो जाता है, चैन उसको नहीं होती, गरीबी धनी के ऊपर में नहीं ये निर्भर है, किसी प्रकार से उसको चैन नहीं, अशांति हुई, कोई सहारा नहीं देखता, उस समय में बाई चांस पूर्व जन्म के संस्कार से, इस जन्म के संस्कार से यदि शुद्ध संतों का संग मिला तो कुछ सुनने को उसको मिलता है, तो वो बतलाता है, देखो यदि तुम इन दुखों को दूर करना चाहते हो, विपत्ति को दूर करना चाहते हो, तो भगवान का भजन करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रजम। यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्योचित अपने, जिसको मानवता मानवता आज कह रहे हैं, मानवता के समस्त अंगों को कोई पूर्ण करे और भगवान के साथ में कोई भी भाव न रहे, भगवान का भजन न रहे, भक्ति न रहे, तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा, बल्कि और संसार में धसता हुआ चला जाएगा दलदल में। क्योंकि ये शरीर को हम मनुष्य समझते हैं और ये शरीर हम है ही नहीं, हम तो हैं आत्मा। मानवता कुछ भगवत्ता के निकट में है, ये बात तो ठीक है, यदि उसका सदुपयोग हम करते हैं मानवता का भगवान के भजन में तब तो ठीक है। तो इसलिए जब वो सुनता है कोई व्यक्ति, जे भाई जितने दुख हैं सब दूर हो जाएंगे यदि भगवान का भजन करो, और जितने प्रकार के सुख हैं वो भी सुख मिलेंगे भगवान का भजन करने से, तो एक आदमी को कुछ अवलंबन मिलता है, भाई क्या करूं, भगवान का नाम कीजिए, भगवान की कथा सुनिए। जैसे गजराज ने एक पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया अपने हृदय के रूप में, और प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया, उसके सारे कष्ट दूर हो गए और उसको वैकुंठ की गति दे दी। ऐसे ही तुम यदि भगवान का भजन करेगा तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, सुख मिलेगा। ये दो प्रवृत्ति हुई, एक दुख दूर होना और एक सुख। इसको सुन करके उसको कुछ श्रद्धा होती है, जैसे ये व्यक्ति साधारण आदमी नहीं है, ये खुद पालन करता है और देखते हैं कि सब समय खुश रहता है, तो ये ठीक कह रहा है, ये प्रमाणिक व्यक्ति है, करता है उसी को कहता है। तो हम इसमें तो कुछ पैसा लगता नहीं है, ऐसे थोड़ा सा हरिनाम करके देखें, कुछ भगवान की कथा और अपना घर का काम करते रहेंगे, इसमें तो कोई हर्ज तो है नहीं, इसलिए वो मान लेता है। इसमें जो दुख दूर करने के लिए जो प्रवृत्ति से भगवान के शरणागत होकर के या नहीं शरणागत होकर के जो भक्ति में प्रवेश करने की श्रद्धा जो हुई, ये वैधि भक्ति है। दुख को दूर करने के लिए कर रहे हैं, भगवान से संबंधित अभी नहीं हुआ, भगवान का भजन कर रहे हैं किंतु अपने दुख को दूर करने के लिए, यहां से वैधि भक्ति के प्रति श्रद्धा आने लगी। भक्ति का पहला लक्षण यह है साधन का। यदि कोई हृदय के बक्से में इसको लो तो और अच्छा रहेगा। यह बक्सा का तुम रखो किंतु इसको यहां से सुनो तो अधिक काम करेगा। तो दुख दूर करने से भगवान का क्या संबंध, दूर तो कर देंगे, तुमने भगवान के लिए तो चाहा नहीं, इसलिए ये पत्ता का एक भाग रूखड़ा है। ये समझ रहे हैं, रूखड़ा किसको कहते हैं, सॉफ्ट नहीं है, मशीन कोमल नहीं है। जब किसी पेड़ में पौधा में पत्ते जब निकलते हैं तो कुछ संकुचित ऐसे रहते हैं, तो ऊपर वाला जो है ना वो रूखड़ा होता है
अंदर
और अंदर में कोमल होता है ना। तो भक्ति के जो पत्ते जब निकलते हैं, जब निकलने के होते हैं, तो दो पत्ता पहले निकलता है, क्लेश अग्नि और शुभदा। तो इसमें से क्लेश अग्नि माने भक्ति जो आती है भगवान का नाम करने से, भजन करने से, हरि कथा सुनने से, भगवान का अर्चन पूजन करने से, भगवान के धाम में जाने से, ये जो भक्तियां हैं, इससे क्या होगा, पहले ही दुख दूर करेगा, जरूर करेगा। क्लेश अग्नि है, क्लेश को दूर करती है। जितने हमारे पूर्व पूर्व प्रारब्ध अपरारब्ध अथवा ये प्रारब्ध जो